नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली साधन है। ये लोगों को आत्मनिर्भर, जागरूक और सक्षम बनाती है। नई दिल्ली में आज जनजातीय छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सतत विकास तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से प्रगति करें।
भारत सरकार जनजातीय समुदाय के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहे हैं। छात्रवृत्ति योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये युवाओं के सपनों को पंख देने का माध्यम है। ये उन युवाओं के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है, जिनमें प्रतिभा तो होती ही है परंतु संसाधनों का अभाव उन्हें आगे बढ़ते रोकता। लेकिन मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने से अनेक युवाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं केवल वित्तीय सहायता का साधन नहीं है, बल्कि ये युवाओं को सपने देखने का अधिकार देती है। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति शिपकोसा माशातिले ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। उनके साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, कौशल विकास और जनजन संबंधों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। केंद्र सरकार ने आव्रजन और विदेशी नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार जो विदेशी नागरिक भारत में 180 दिनों के लिए आते हैं और अपने वीजा की अवधि बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें वीजा की समाप्ति से पहले ही अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीकरण पहले 180 दिन की अवधि पूरी होने के बाद 14 दिन के भीतर कराया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इसमें आव्रजन और विदेशी नियम 2025 के अंतर्गत पंजीकरण की समय सीमा और अपील प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा पहली बार नियमों में ऑनलाइन अपील प्रणाली जोड़ी गई है। अब किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति आव्रजन ब्यूरो के आयुक्त के समक्ष ऑनलाइन अपील दायर कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज सर्वोच्च न्यायालय के 5 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति शिल नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना ने सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र द्वारा उनकी नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केरलम में अगस्त्यमलाई पारिस्थितिकी परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए एक समयबद्ध अतिक्रमण उन्मूलन योजना तैयार करने और इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने का निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि उन सभी 118 वर्तमान और सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए जिन्होंने अतिक्रमण किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उनके पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल आज से शुरू हो गया है। ये पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उनका स्वागत किया। प्रोटोकॉल मंत्री जयकुमार रावल भी हवाई अड्डे पर उपस्थित थे। राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन आज मुंबई में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे और विभिन्न स्थलों का दौरा करेंगे। वे आज शाम लोक भवन में उनके सम्मान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। यह मुलाकात भाजपा को जाने कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।